प्रिय श्रोताओं नमस्कार। बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सब भी हमारे साथ आज का बाइबल अध्ययन करने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से यशाया नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और इसका मुख्य विषय है मसीह का आगमन और छुटकारा। प्रिय श्रोताओं, हमें विश्वास है कि इस बाइबल अध्ययन के द्वारा आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। लीजिए, प्रस्तुत है ये बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप सब कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, विशेष करके अपने उन सभी मित्रों का जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम इन दिनों बाइबल में से यशाया नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और इस अध्ययन के द्वारा से हम पिछले अध्ययनों में कई आशीषों को प्राप्त कर चुके हैं। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे जीवित और सामर्थी दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है ताकि हम आपके जीवित वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम आपके वचन में से सीखना चाहते हैं, मनन चिंतन करना चाहते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें ताकि हर एक जब आपके वचन को सुने तो निश्चित रूप से आपका वचन प्रत्येक के जीवन में कार्य करने पाए। हर एक प्रकार की बुराइयों से, बुरी संगति से, हर एक प्रकार के अपराध से प्रत्येक की रक्षा करें, जीवन को बदल दे ताकि एक एक जीवन आपको महिमा दे सके। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और यशाया अध्याय 10 से हम अपने अध्ययन को आरंभ करेंगे। इसका विषय है इसराइल पर परमेश्वर के दंड का कारण होने के बाद अश्शूरों को दंड, महाक्लेश और हर्मगिदोन का युद्ध। मैं एक बार फिर आपको स्मरण कराना चाहता हूं कि भविष्यवाणियों में यह श्रृंखला अध्याय 7 से आरंभ होती है और अध्याय 12 तक चलती है। ये भविष्यवाणियां दुष्ट राजा आहाज के युग में सुनाई गई थी। उस अंधकार की पृष्ठभूमि में यशाया स्थानीय परिस्थितियों के संदर्भ में भविष्यवाणी करता है, परंतु उसका संकेत युगों पश्चात उसके पृथ्वी पर राज करने से भी संबंधित है। मेरे मित्रों, परमेश्वर के वचन का यह भी एक अद्भुत अध्याय है। इसमें विभिन्न राष्ट्रों के साथ परमेश्वर के व्यवहार के महान सिद्धांत और वृहत योजनाएं दी गई हैं। अध्याय का आरंभ उस युग के न्यायालयों के विवाद से आरंभ होता है। अन्य जातियों का अन्याय, मनुष्यों की संस्कृति और परमेश्वर के दंड से प्रकट होता है। हम आगे चल करके देखेंगे कि परमेश्वर अश्शूरों के हाथों अपनी प्रजा को दंड देगा। मेरे मित्रों, अश्शूर राजा भावी उत्तर के राजा का प्रतीक है जो इमानुएल के देश पर आक्रमण करेगा। यह भविष्यवाणी यशाया के निकट भविष्य के परे इसराइल के अंतिम दिनों के संबंध में है। यशाया उस समय को उस समय कहकर व्यक्त करता है। अध्याय का अंत उत्तर से आने वाली सेना के आक्रमण और हर्मगिदोन के युद्ध का भयानक चित्रण को प्रस्तुत करता है। तो आइए हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे दुष्ट न्यायियों को परमेश्वर का दंड। तो आप मेरे साथ यशाया की पुस्तक 10 अध्याय उसके एक पद को निकालें। यशाया 10 अध्याय उसके एक पद में इस प्रकार से लिखा है, हाय उन पर जो दुष्टता से न्याय करते और उन पर जो उत्पात करने की आज्ञा लिख देते हैं। ध्यान दीजिए, हाय उन पर जो दुष्टता से न्याय करते, अर्थात उनके निर्णय गलत होते हैं, उन्हें न्याय करना चाहिए परंतु वे अन्याय करते हैं, जैसा कि आज भी हम अपने देश में देखते हैं। जहां पर न्याय होना चाहिए वहां पर न्याय नहीं मिल पाता है। मेरे प्रियो, आरंभ के ये कुछ पद किसी सदाचारी के उपदेश से प्रतीत होते हैं। इसमें ध्यान देने योग्य एक ही भिन्न बात है कि मनुष्य के न्याय के पीछे परमेश्वर का न्याय होता है। पृथ्वी पर उपस्थित न्यायी और न्यायासन भी आवश्यक है कि परमेश्वर के न्याय को प्रकट करे और उसे लेखा दे। यशाया 10 अध्याय उसके 2 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा है कि वे कंगालों का न्याय बिगाड़ें और मेरी प्रजा के दीन लोगों का हक मारें, कि वे विधवाओं को लूटें और अनाथों का माल अपना लें। यह पद आज का सा प्रतीत होता है। मेरे विचार में हम आज के संसार में इन्हीं बातों को देखते हैं। न्यायालयों में न्याय होना है और उन्हें परमेश्वर के न्याय को प्रकट करना है, परंतु वे ऐसा नहीं करते हैं। अन्याय की बढ़ती हो गई है, मनुष्यों का पतन हो रहा है, स्वतंत्रता की संकल्पना विकृत हो गई है। प्रत्येक अपराधी के साथ न्याय होना आवश्यक है, परंतु आपका परिवार और मेरा परिवार सड़कों पर सुरक्षित आए जाए, इसके लिए भी आवश्यक है कि अपराधी को दंड दिया जाए। परंतु अनेक अपराधी इन दुर्बल अन्यायियों के कारण सड़कों पर निरंकुश घूम रहे हैं। न्यायी आपके और मेरे परिवार को न्याय नहीं दे रहे हैं, और यही कारण है कि आज दुष्टता बढ़ती जा रही है। आज न्याय के विषय बहुत चर्चा की जा रही है और मैं भी यही चाहता हूं कि अपराधी को दंड दिया जाए, जिससे कि मैं सड़कों पर सुरक्षित चल पाऊं और अपने घर में सुरक्षित रह सकूं। आज सभी तो रात में सड़क पर सुरक्षित हैं ही नहीं, वरन कुछ स्थान तो ऐसे भी हैं कि वहां पुरुष भी सुरक्षित नहीं है। समस्या कहां है? समस्या हमारे न्यायालयों में है। यही तो परमेश्वर कह रहा है कि न्यायालयों में न्याय नहीं है, और इसीलिए वह न्याय करना चाहता है। मेरे मित्रों, अब परमेश्वर गरीबों, विधवाओं और अनाथों के बारे में कहता है, उन्हें न्याय की आवश्यकता है। एक बार एक राजनीतिक विश्लेषक कह रहा था कि गरीबों की सहायता के लिए जितने भी कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं वे वास्तव में उनकी हानि के लिए ही होते हैं। क्यों? क्योंकि गरीब का न्याय करने वाला केवल परमेश्वर है। न्यायियों को इस पृथ्वी पर परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करना है। आज अनेक न्यायी परमेश्वर से रहित हैं। जब तक उन्हें यह बोध न हो कि वे परमेश्वर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वे न्याय करने योग्य नहीं है। बाइबल पर हाथ रख करके कसम खाने वाले भी विश्वास नहीं करते कि वह परमेश्वर का वचन है। वे सिर्फ नियम पूरा करते हैं और जो बोलना है अपने मुख से बोल देते हैं। मेरे मित्रों, परमेश्वर सिद्धांतों की बात कर रहा है। जब तक कि एक न्यायी परमेश्वर का प्रतिनिधित्व न करे, वह मनुष्यों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। परंतु मैं मूर्ख सा लगता हूं, क्योंकि हम सच्चाई से बहुत दूर निकल गए हैं। मेरे प्रियो, आज मुझे और आपको उस सच्चाई की ओर मुड़ने की आवश्यकता है, अन्यथा हम पूरी रीति से तबाह हो जाएंगे। और परमेश्वर चाहता है कि हम अपने कामों को बड़ी ईमानदारी के साथ करें। यशाया 10 अध्याय के 3 पद में लिखा है, तुम दंड के दिन और उस विपत्ति के दिन जो दूर से आएगी क्या करोगे? तुम सहायता के लिए किसके पास भाग कर जाओगे? तुम अपने वैभव को कहाँ रख छोड़ोगे? ध्यान दीजिए, परमेश्वर न्यायियों से कहता है, तुम्हें मेरा प्रतिनिधित्व करना है। एक दिन ऐसा आएगा जब मैं तुम्हारा न्याय करूंगा। मेरे विचार में प्रत्येक न्यायी को यह समझना आवश्यक है कि एक दिन वह परमेश्वर के सामने खड़ा होगा और उसे भी अपना हिसाब देना होगा। उसे इस पृथ्वी पर अपने उत्तरदायित्व का जो कार्य दिया गया है उसका लेखा देना होगा। हमारे न्यायी दयालु हैं, वे अपराधी को दया दिखाना चाहते हैं, परंतु उन्हें अपराधियों का न्याय करना है, चाहे गरीब हो या धनवान। न्याय के दिन अन्यायी हाकिम धर्मी न्यायकर्ता के सामने खड़ा होगा और उसको भी उसका हिसाब देना होगा। यशाया 10 अध्याय उसके 4 पद में लिखा है, वे केवल बंदियों के पैरों के पास गिर पड़ेंगे और मरे हुओं के नीचे दबे पड़े रहेंगे। इतने पर भी उसका क्रोध शांत नहीं हुआ और उसका हाथ अब तक बढ़ा हुआ है। मेरे प्रियो ध्यान दीजिए, ऐसा अन्याय समाज के प्रत्येक वर्ग में दिखाई देता है। प्रत्येक मनुष्य इससे प्रभावित है और पतन एवं विनाश के मार्ग पर चलाया जा रहा है। आज नैतिकता के क्षेत्र में हम आज एक नए पतित स्तर पर हैं, जो दिन प्रतिदिन नाश हुआ जा रहा है। क्या हम अपने आप में ऐसा महसूस करते हैं कि हम सुरक्षित हैं, हमारे बीच में कुछ भी अपराध नहीं है? मेरे मित्रों, हमने देखा कि इसराइल में गरीबों, विधवाओं और अनाथों को न्याय नहीं मिल रहा था और परमेश्वर उन्हें दंड देने के लिए तैयार था। परमेश्वर अश्शूरों को अपने दंड का साधन बनाएगा और उसके बाद वह अश्शूरों को दंड देगा। मेरे मित्रों, अब हम इस संपूर्ण भाग के मुख्य विषय पर आते हैं। यहाँ परमेश्वर बाइबल का सबसे विचित्र कथन को प्रस्तुत करता है। अधिकांश विश्वासियों के लिए यह सहन शक्ति से परे है। मेरे प्रियो, यदि आपको यह बात पसंद नहीं तो परमेश्वर से शिकायत करें, क्योंकि कहने वाला वही है। आइए हम पढ़ें यशाया 10 उसके 5 पद में लिखा है, अश्शूर पर हाय, जो मेरे क्रोध का लठ और मेरे हाथ में का सोंटा है, वह मेरा क्रोध है। इस संपूर्ण अंश का मुख्य पद यही है और यह परमेश्वर के संपूर्ण उद्देश्य पर प्रकाश डालता है। इस पद में लिखा है कि परमेश्वर अश्शूर को अपने क्रोध का लठ बनाएगा। यह एक विचित्र एवं अद्भुत बात है। आप अपने बच्चे को सुधारने के लिए बेंत काम में लेते हैं, वैसे ही परमेश्वर अश्शूरों को अपने अनुशासन की छड़ी बनाएगा कि उसकी प्रजा सुधारी जाए। अश्शूर जो विनाश ढाएंगे, वह वास्तव में परमेश्वर का लाया हुआ है, अर्थात परमेश्वर के द्वारा लाया हुआ विनाश है। आज के मनुष्य के लिए यह स्वीकार करना बहुत कठिन है। यशाया 10 अध्याय उसके 6 पद में लिखा है, मैं उसको एक भक्तिहीन जाति के विरुद्ध भेजूंगा और जिन लोगों पर मेरा रोष भड़का है उनके विरुद्ध उसको आज्ञा दूंगा कि छीन छान करे और लूट ले और उनको सड़कों की कीच के समान लताड़े। मेरे मित्रों, परमेश्वर यहां तक कहता है कि अश्शूर से हरीब को लाने वाला और उत्तरी राज्य को बंधुआई में भेजने वाला वही है। अश्शूर उत्तर दिशा से आने वाले उस राज्य का प्रतीक है जो अंतिम दिनों में परमेश्वर का साधन बनेगा। अनेक विचारकों का मत है कि यह पद पशु का प्रतीक है, जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 13 अध्याय के अनुसार समुद्र से निकलेगा और रोमी साम्राज्य का शासक होगा। मैं स्पष्ट कहते हुए कहना चाहूंगा कि वह देश रूस होगा। द्वितीय विश्व युद्ध से आज तक रूस ने सब राजनीतिक युद्ध जीते हैं। अब आप पूछेंगे, परमेश्वर क्या अभक्त रूस को साधन बनाएगा? उसने यशाया के युग में अभक्त अश्शूरों को साधन बनाया था कि अपनी प्रजा की ताड़ना करे। क्या परमेश्वर हमें किसी के सामने झुकने देता है कि हमें बुद्धि प्राप्त हो? परंतु हम विवेक नहीं रखते हैं। हम अब भी परमेश्वर के निकट नहीं आते हैं, उसके वचनों को नहीं पढ़ते हैं, उसकी बातों को नहीं सुनते हैं, और यही कारण है कि वह हमें ताड़ना के द्वारा से अपने निकट लाएगा। यशाया 10 अध्याय उसके 7 और 8 पद में लिखा है, परंतु उसकी ऐसी मनसा नहीं है, न उसके मन में ऐसा विचार है, क्योंकि उसके मन में यही है कि मैं बहुत सी जातियों का नाश और अंत कर डालूं, क्योंकि वह कहता है, क्या मेरे सब हाकिम राजा के तुल्य नहीं। मेरे मित्रों, यदि आप अशूर के राजा से पूछते कि क्या परमेश्वर उसे इसराइल के दंड की छड़ी बनाए हुए है, तो वह आप पर हंसता। यदि आप रूस से पूछे कि क्या वे परमेश्वर का साधन हैं, तो उनका शासक बहुत हंसेगा। उनके लिए ऐसी बातें उपहासजनक है। अशूर कभी नहीं मानते कि वे परमेश्वर के नियंत्रण में चलाए जा रहे थे। उन्हें हर स्थान पर महान विजय प्राप्त हुई, अतः वे घमंड से भरे हुए थे और अपनी वास्तविक स्थिति के प्रति अंधे थे। वे और उनका घमंड उनकी शक्ति और वरीयता पर था, क्योंकि उन्हें सब जगह विजय प्राप्त हुई थी। आज भी अनेक राज्य परमेश्वर द्वारा उसके उद्देश्य पूर्ति के निमित्त काम में लिए जा रहे हैं, परंतु वे सोचते हैं कि वे बहुत महान और बुद्धिमान हैं। हम यशाया के पुस्तक 10 अध्याय उसके 11 से 14 पद में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, क्या उसी प्रकार मैं यरूशलेम से और उसकी मूर्तों से भी न करूं? इस कारण जब प्रभु सियोन पर्वत पर और यरूशलेम में अपना सब काम कर चुकेगा, तब मैं अशूर के राजा के गर्व की बातों का और उसकी घमंड भरी आंखों का बदला दूंगा। उसने कहा है, अपने ही बाहुबल और बुद्धि से मैंने यह काम किया है, क्योंकि मैं चतुर हूं। मैंने देश देश की सीमाओं को हटा दिया और उनके रखे हुए धन को लूट लिया। मैंने वीर के समान गद्दी पर विराजने हारों को उत्तर दिया है। देश देश के लोगों की धन संपत्ति चिड़ियों के घोंसलों के समान मेरे हाथ आई है, और जैसे कोई छोड़े हुए अंडों को बटोर ले, वैसे ही मैंने सारे पृथ्वी को बटोर लिया है, और कोई पंख फड़फड़ाने या चोंच खोलने या चींची करने वाला न था। मेरे मित्रों, जब परमेश्वर अशूर के हाथों अपना उद्देश्य पूरा कर लेगा, तब वह उन्हें भी दंड देगा। वे बचेंगे नहीं, इतिहास इसका गवाह है। यशाया स्पष्ट करता है कि परमेश्वर पृथ्वी के सब राष्ट्रों को अपने नियंत्रण में चलाता है और उनका वह न्याय करता है। मेरे मित्रों, जिस प्रकार से वह राष्ट्रों को अपने नियंत्रण में चलाता है और उनका न्याय करता है, उसी प्रकार हम मनुष्यों को जिसने उसे रचा है, हम पर भी अपना नियंत्रण वह रखता है। हो सकता है कि हमारे जीवन में अभी छूट है और हम बहुत सारे ऐसे कार्यों को कर रहे हैं, और हम सोचते हैं कि इसे हमारे माता पिता, हमारे मित्र, हमारे रिश्तेदार, यहां तक कि हमारे पड़ोसी नहीं जानते हैं। लेकिन ध्यान दें, कोई एक है जो आपको देख रहा है, और वह परमेश्वर है। आपके पाप के घड़े जब भर जाएंगे तो वह इसका हिसाब लेगा। जब आप पकड़े जाएंगे तो आपके माता पिता आश्चर्य करेंगे, आपके मित्र आश्चर्य करेंगे, आपके पड़ोसी आश्चर्य करेंगे, आपके कलीसिया के लोग आश्चर्य करेंगे कि यह भाई यह बहन ऐसे नहीं थी, ऐसे क्यों हुआ, कैसे हुआ। लेकिन उन्हें पता नहीं कि आप पाप में जीवन जी रहे हैं, और तब परमेश्वर आपका न्याय करता है तो सब कुछ स्पष्ट और खुल्लम खुल्ला हो जाता है। मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर मुझे और आपको, हम सबको अवसर देता है कि हम उसकी ओर फिर जाएं, अपने बुराइयों से अपने आप को हटा लें और उसकी बातों को सुनें, ताकि हम उसके साथ रहकर उस आनंद को, उस आशीष को प्राप्त करें और उसका लाभ उठाएं। मेरे प्रियो, मैं नहीं जानता कि आपका जीवन किस प्रकार का जीवन है, लेकिन आज के इस अध्ययन के द्वारा मुझे इस बात का स्पष्टीकरण प्राप्त होता है कि परमेश्वर मुझसे और आपसे चाहता है कि हम उसके नियंत्रण में रहें, उसकी आज्ञा का पालन करें, अन्यथा वह किसी भी शत्रु के द्वारा से भी अपनी महिमा लेगा और हमारी हानि करेगा। इससे पहले कि हम सब कहें कि प्रभु आप मुझे बचाइए, क्यों ना आज ही हम अपने आप को उसके निकटता में लाएं। जिस प्रकार से अशुर अपने आप में घमंड कर रहा है कि यह सब कुछ वह अपने बल पर कर रहा है, लेकिन वह इस बात को नहीं समझ पा रहा है कि यह सब कुछ परमेश्वर के द्वारा किया जा रहा है। मेरे प्रियो, आइए हम अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपे, आज के वचन के प्रकाशन में अपने आप को देखें और घमंड न करें, परंतु दयावंत बने, गरीबों का, विधवाओं का न्याय चुकाएं, इस बात को जानते हुए कि एक दिन मेरा भी कोई न्याय करेगा, मुझे भी किसी के सामने हिसाब देना होगा। इस पृथ्वी पर हम धोखा दे सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, दूसरों को बेवकूफ बना सकते हैं, परंतु परमेश्वर के समक्ष हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसके सामने हमें सब कुछ सच सच बताना पड़ेगा। क्यों ना आज हम इस वचन के प्रकाशन में अपने आप को लाते हुए अपने आप से प्रश्न पूछें और प्रभु के सामने उन सारी बातों को स्वीकार कर लें। आइए हम सब मिलकर के प्रार्थना करें। हमारे दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके जीवित और सामर्थ्य वचन के लिए, जिसके द्वारा से प्रभु आपने हम सबसे बातचीत किया है और इस बात का आपने हमें स्मरण दिलाया है कि आप हमारा भी न्याय करेंगे और आप हमारे जीवन को बदल डालेंगे। हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों के साथ हो, हर एक प्रकार की बुराइयों से, बुरी आदतों से आप छुटकारा दें, बुरे विचारों से छुटकारा दें, ताकि प्रभु हम न्याय दे सकें और आपके प्रेम में, आपके भय में, आपके डर में अपना जीवन को बिता सकें। इस समय फिर से हम सब अपने आप को आपके हाथ में देते हैं, हमें आशीष करें, अपनी महिमा लें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मुझे आशा है कि आज की इस अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही अपने जीवन में आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु आप सबके साथ हो और आप सबकी सहायता करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। श्रोताओ, इस कार्यक्रम को आप हमारे वेबसाइट radio882.com पर भी सुन सकते हैं। इस वेबसाइट radio882.com के बारे में अपने मित्रों को भी सूचित कर दें। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
मांगने से ज्यादा, मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे सोचने से अच्छा मैंने पाई है आशीष यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे सोचने से अच्छा मैंने पाई है आशीष यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा, मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा, मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे सोचने से अच्छा मैंने पाई है आशीष यीशु से।